ओम शांति। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाए। हमारे दीदियों से दादियों से आप लोग जितना आई कांटेक्ट बना के रखेंगे उतना आप लोग के लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। हम 15-20 साल ज्ञान में होने के बाद हम लड़ते हैं आगे की सीट पकड़ने के लिए ताकि हम उनसे आई कांटेक्ट बना के रखें। जब उनकी दृष्टि आपके दृष्टि से लगेगी पड़ेगी तब आप लोगों को ज्यादा लाभ होगा। आज का जो क्लास है हम लोगों ने अब ये 4-5 दिन से देखा आप लोगों को कई सारे क्लासेस लिए गए, कई सारे सेशंस हुए हैं। यहाँ दीदी बैठी हुई है कमला दीदी, इन्होंने भी जो है आप लोगों को कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, ये यज्ञ की हिस्ट्री क्या है। तो हर एक चीज का एक प्रमाण होता है, तो वो प्रमाण बताने के लिए, वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए और ये यज्ञ की क्या हिस्ट्री रही है इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ दीदी का स्वागत करें।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ हिस्ट्री के बारे में। आज दिन तक आपने जो बातें सुनी समझी स्वयं के बारे में, अपने मन के बारे में, थॉट्स के बारे में, परमात्मा के बारे में, है ना, आंतरिक शक्तियों के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, पर आपको क्या लगता है ये सब कहाँ से आया, ये नॉलेज किसी को कैसे मिला? आप लोग टीवी पे भी कई प्रोग्राम सुनते होंगे ब्रह्मा कुमारीज के, है ना, यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी पर, कई ऐसी हमारी महान विभूतियां हैं जो गहरी गहरी ज्ञान की बातों को सरल रीति हम सबके बीच में रखते हैं, पर उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया? कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना, क्योंकि चाहे कोई इंसान, कोई जो मनुष्य होते हैं वो कितनी ही अच्छी अच्छी बातें क्यों ना करें, कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना करें, लेकिन एक समय आता है उसके बाद ऐसा लगता है अच्छा ये दीदी तो वही बात कह रहे हैं बार बार, ये बहन जी तो वही बात कह रहे हैं, ये भाई साहब तो वही बात कह रहे हैं, अब और क्या, आगे क्या, अब हमको कुछ नया चाहिए, ऐसे मन में आता है। क्योंकि किसी भी इंसान की बुद्धि की एक सीमा होती है, चाहे वो कितने ही महान क्यों ना हो, परंतु हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि की कोई सीमा जरूर होती है, उसके पार वो नहीं जा सकते। लेकिन परमात्मा जो है ना वो सीमाओं से परे है, जो ईश्वरीय शक्ति है वो सीमाओं से परे है और वो ज्ञान का सागर है। सागर, सागर कभी कम होता है, उसका पानी कम होता है, उसका ओर छोर दिखता है, अनादि अनंत लगता है। ऐसे परमात्मा की तुलना दो चीजों से की गई है, कहते हैं ईश्वर ज्ञान का सागर है और दूसरा ज्ञान सूर्य है, ऐसा बताते हैं। सूर्य की कलाएं कभी भी घटती बढ़ती नहीं है, सागर कभी घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए ईश्वर की तुलना उस बात से मनुष्यों ने की हुई है। आप बहुत कुछ संस्था में आकर के देख रहे हैं, एक समय था जब आपने शायद थोड़ा थोड़ा कुछ सुना हुआ था, है ना, आपने सुना था ब्रह्मा कुमारीज नाम की एक ऐसी संस्था है, आपने शायद बहनों को देखा होगा सफेद कपड़े पहने, बहनें सेवा में इधर उधर जाते हैं तो आपने कईयों को देखा होगा, कभी एक आध बार किसी से ओम शांति करने का मौका भी मिला होगा। पर ये जो 3-4 दिन से आप यहां पर हैं, इतनी समीपता से तो आपने पहले कभी नहीं सोचा देखा होगा, है ना? तो आपको क्या दिखता है? अब आप घर में हैं, है ना, आश्रम में हैं, घर में हैं, घर में रह करके घर के वातावरण को आप देख रहे हैं, घर में रह करके आप परिवार को देख रहे हैं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। आपको क्या क्या देखने मिला, क्या समझने के लिए मिला, क्या देखने के लिए मिला यहां पर? जी जोर से, स्वर्ग है। हाँ, धरती पर स्वर्ग है ये। अच्छा, और आप क्या कहेंगे? सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ, यहाँ जिस किसी के पास भी जो भी कार्य है, जिसको हम सेवा कहते हैं, चाहे किसी को स्टेज की सेवा है, किसी को बैक स्टेज की सेवा है, किसी को बगीचे की सेवा, भोजन की सेवा, कुछ भी मिला हुआ है ना, जो आत्मा जो कार्य सेवा समझकर कर रही है, वो पूर्ण निष्ठा से और निस्वार्थ भाव से करते हैं। पता है निस्वार्थता क्यों है यहाँ? क्यों है निस्वार्थता बताओ? क्योंकि यहां पेड स्टाफ नहीं है कोई भी, किसी को सैलरी नहीं मिलती है, किसी को इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। यहां पर एक एक मनुष्य आत्मा जो सेवा पर है, सेवाधारी हैं, हम सब सेवाधारी हैं, हम सभी स्व इच्छा से ये सेवा कर रहे हैं। हमें कुछ मिल रहा है करके, क्या मिल रहा है? खुशी मिल रही है, पेमेंट नहीं मिलती और हमें चाहिए भी नहीं, प्रमोशन भी नहीं मिलता है, चाहिए भी नहीं। इसलिए यहां पर भाव क्या है, ये जो वायुमंडल है ना, ये इस निस्वार्थ भाव से क्रिएट होता है। हाँ जी भाई, सब कुछ कह रहे थे। परमात्मा यहां जीवन को दोबारा से बदलने का, परिवर्तन करने का मौका दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो परमात्मा कैसे देते हैं इसको समझते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य इस संसार के अंदर ऐसे नहीं होता, जादू हो गया, मैजिक हो गया, सिमसिम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इस संसार में। चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं, हर चीज लॉजिकली होती है, हर बात के पीछे कुछ बेसिक कारण होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से संसार में सब कुछ चलता है। भगवान भी उस प्रोसेस के द्वारा ही, उस विधि के द्वारा ही सिद्धियां करवाते हैं, प्राप्तियां कराते हैं। ये यात्रा शुरू हुई थी 1936 में, 1936-37 के समय पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं, जिनका आप तस्वीर देखते हैं, जिनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा माना पिता समान व्यक्तित्व, और उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट के नाते से हम बाबा कहते हैं। 1936-37 में ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक नाम था वो दादा लेखराज था। दादा लेखराज सिंध प्रांत में, मैं बात कर रही हूं अविभाजित भारत की, हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि 36-37 में सिंध प्रांत जो हैदराबाद, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पहले तो भारत ही था ना, भारत से ही तो वो भी निकला है। तो उस समय सिंध प्रांत में दादा लेखराज नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो बचपन से ही बहुत सदाचारी, गुणी और सात्विक विचारों वाले थे और बहुत सम्मानजनक व्यक्तित्व था। 1936 में दादा लेखराज का जो तन था ना, वो 60 वर्ष की आयु का था, और दादा लेखराज अपने जीवन काल में भक्ति भाव वाले इंसान थे और एक ऐसे महान आत्मा थी जो अपने भक्ति काल में रामायण पढ़ा करते थे, गीता पाठी थे। उन्होंने अपने भक्ति काल में 12 गुरु भी किए थे। लोग पहले जमाने में गुरु बहुत करते थे ना, मार्गदर्शन के लिए करते थे, है ना, ऐसे गुरु करते थे। तो उन्होंने भी अपने भक्ति काल में किया, परंतु उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी क्रोध नाम के विकार को यूज नहीं किया, कभी नहीं किया। बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक कभी क्रोध नाम के विकार का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो दादा लेखराज के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी, और श्री नारायण के बहुत अच्छे भक्त भी थे। एक समय आया जब 1936 में दादा लेखराज को 3 दिव्य साक्षात्कार हुए, डिवाइन विजन्स हुए। उन्होंने देखा कि इसी धरा का एक ऐसा समय जब महाभारी विनाश हो रहा है। आज जब मैं ये बात आपको सुना रही हूं तो आपको लगेगा ये तो आजकल की बात है ना, शायद सिस्टर आजकल की बात सुना रहे। नहीं, ये 1936 की बात सुना रहे, जो आज का समय अलग था। संसार में ये समय नहीं था जैसे आज है। उस समय में ये मिसाइल वॉर और ये सब नहीं हो रहा था। उस समय पर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा, अचानक साक्षात्कार हुआ जिसमें उन्होंने देखा महाभारी विनाश का दृश्य देखा, जिसमें वॉर हो रही है, सिविल वॉर हो रही है, मिसाइल वॉर हो रही है, प्रकृति के 5 तत्व प्रचंड रूप से प्रकोप में है, और उन्होंने देखा बीमारियां बढ़ रही हैं और बहुत त्रासदी हो रही है। कहने का भाव है इसी धरा का एक ऐसा समय जिसमें महाभारी परिवर्तन का समय, विनाश का समय उन्होंने देखा। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा एक ऐसा ही समय, इसी धरा का एक ऐसा समय जो स्वर्णिम समय है, जो गोल्डन एरा बोलेंगे जिसको, ऐसा समय दादा लेखराज को साक्षात्कार में दिखाई दिया, जहां पर मनुष्य आत्माएं और प्रकृति के 5 तत्व सुखदाई होते हैं। आज क्या है, दोनों दुखदाई हैं, है ना। प्रकृति के 5 तत्व भी दुखदाई हैं और मनुष्य आत्माएं भी दुख देते हैं एक दूसरे को। उस समय में उन्होंने देखा कि इस धरा पर एक ऐसा समय आ रहा है जो स्वर्णिम समय है, सुखदाई समय है। तो ऐसे डिवाइन विजन्स के बाद उन्होंने अपने तत्कालीन गुरुजी से पूछा कि ये मुझे क्या दिख रहा है, इसका क्या अर्थ है। तो उनके तत्कालीन गुरु ने कहा कि आप थोड़ा सा धीरज धरिए, इस प्रकार के दिव्य साक्षात्कार मेरे वश की भी बात नहीं है, परंतु आपको समय अनुसार खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। फिर एक समय के बाद उनके दादा लेखराज के घर में सत्संग चल रहा था, और सत्संग के बीच से ही वो अपने जब कमरे में जाते हैं तो उस समय पर एक बहुत डिवाइन अनुभूति दादा लेखराज को हुई, और वो उनकी धर्म पत्नी और जो बहू और जो उनका परिवार था उन्होंने इस दृश्य को देखा था कि दादा लेखराज के अंदर एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाशित बहुत अद्भुत ज्योति आकर के समाई, और दादा लेखराज के मुख से कुछ शब्द निकले, और वो शब्द की आवाज जो थी वो दादा लेखराज की नहीं थी। वो शब्द थे अहम ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अहम निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात 1936 में दादा लेखराज नाम के एक साधारण मानव के तन में परमपिता परमात्मा जो निराकार शक्ति है उन्होंने प्रवेश कर सत्य ज्ञान देना शुरू किया और कहा मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं निजानंद स्वरूप हूं, अर्थात मैं निज के ही आनंद में खोया रहता हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। देखिए इसीलिए उसको खुदा कहते हैं, खुदा माना जो खुद आकर के अपना परिचय दे। तो परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है जिसकी मान्यता हर एक धर्म में इसी रूप में है, जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट गॉड इज लव, आई एम द सन ऑफ द गॉड आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड। उन्होंने कभी कहा मैं आई एम द गॉड, कभी नहीं कहा। ऐसे ही आप देखो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, एक ओंकार निराकार, अर्थात वो एक है और वो निराकार है। निराकार माना जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है, वो ऐसा है, मैं उसकी ओट में रहता हूं। ऐसे ही आप देखो हिंदू धर्म में शिव की जो पिंडी होती है उसको एक और प्रसिद्ध नाम है, क्या है, ज्योतिर्लिंगम। और आपको पता है ना लिंगम का मतलब क्या होता है, लिंगम माना सिंबल, चिन्ह। किस बात का वो चिन्ह है, ज्योति का वो चिन्ह है, ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का यादगार स्वरूप शिव की पिंडी दिखाते हैं। इसलिए आप देखो कई बार शिव की पिंडी में से प्रकाश निकलता हुआ दिखाते हैं ना, आपने भी देखा होगा, कोई इंसान निकलता हुआ तो नहीं दिखाते हैं, कोई और प्राणी निकलता हुआ तो नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही इस्लाम धर्म में मक्का मदीना में जब हज करने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां किसी की तस्वीर मूर्ति नहीं है, वहां पर क्या है, गोल सा एक काले रंग का पत्थर है, उसको कहते हैं संगे अस्वत पत्थर, अर्थात पवित्र पत्थर। उस पवित्र पत्थर को चूमकर लोग कहते हैं नूरे इलाही, मतलब अल्लाह नूर है। नूर का मतलब क्या होता है, नूर का मतलब, हां जी जोर से, प्रकाश। नूर माना प्रकाश, लाइट, रोशनी, ज्योति। किसी ने उसको कहा वो निराकार है, किसी ने कहा लाइट है, किसी ने कहा नूर है, किसी ने कहा हर एक ने कह तो सब एक ही बात रहे है ना, कह तो सब एक ही बात रहे। उस निराकार शक्ति जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, अब उनको इस संसार में सारी दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, तो कभी तो भगवान आएगा ना, अपने बच्चों की पुकार सुनेंगे ना। दुख हरता सुख करता कहते हैं, तो वो दुख कैसे हरेगा, ऐसे नहीं हर सकता। तो उसकी एक विधि है, परमात्मा ने इस संसार, क्योंकि अब ये संसार रहने लायक तो नहीं रहा, आपको क्या लगता है रहने लायक है, रोज लड़ रहे हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हम हर बात में डरते रहते हैं, इतनी बीमारियों से लड़ना पड़ता है, संबंधों से लड़ना पड़ता है, परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, इतनी अनिश्चितताएं हैं, आज क्या हो जाए कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्या इसको जीवन कहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए जीवन, आपको क्या लगता है ये कोई जीवन है क्या जो आज हम जी रहे हैं कलयुग में, हाँ? नहीं। अब ये संसार में आत्माओं के रहने के योग्य, भगवान के बच्चों के रहने के योग्य नहीं रहा, अब इसको परिवर्तन होना ही है। अब कैसे परिवर्तन होगा, संसार को कलयुग को सत्युग तो बनना पड़ेगा। कलयुग को सत्युग कौन बनाएगा, कलयुग को सत्युग कौन बनाएगा। अब देखिए संसार को अगर बदलना, आप में से किस किस को लगता है ये दुनिया बदलनी चाहिए या ऐसे ही ठीक है, इसमें भी मजे ही आ रहे हैं, हाँ? तो आप देखो दुनिया को बदलना है, लेकिन दुनिया तो हम और आपसे ही तो दुनिया है, तो अगर दुनिया को बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। अगर दुनिया को बदलना है, संसार को परिवर्तन करना है, तो हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन, सत्युग लाना पड़ेगा। सत्युग माना सत्यता का युग, एक ऐसा समय सुख शांति वाला। पहले हमारे मन बुद्धि संस्कारों में श्रेष्ठता तो आए, तभी तो सुख शांति आएगी। और अगर इस राजधानी में अभी शांति नहीं है, तो बाहर की राजधानी हम शांति वाली स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो अभी स्थापना का कार्य चल रहा है। तो परमात्मा को वैसे भी कहते हैं स्थापन करता, कहते हैं ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु जी द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश। विनाश किस चीज का, इंसानों का विनाश नहीं, संसार का विनाश नहीं, लेकिन जब इस संसार में बुराई, अवगुण और ढेर सारे पाप हो जाते हैं, उस पाप का नाश होता है, उस बुराई अवगुण विषय विकारों का नाश होता है। तो साधारण मानव तन में परमात्मा ने प्रवेश कर दो काम किया। कौन सा दो काम किया? क्योंकि हम और आप से ही दुनिया है, दुनिया को बदलना है तो हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन हमें बदलने का एक ही तरीका है। इंसानों को बदलने का एकमात्र तरीका क्या है? अगर कोई सत्य बात, पहले तो वो सत्य होनी चाहिए। कैसा सत्य? आपका हिसाब से सत्य, हमारे हिसाब से सत्य, इसके हिसाब से सत्य, उसके हिसाब से सत्य नहीं, उसके हिसाब से जो सत्य है, जो वास्तविक सत्यता है संसार के लिए, जो सबके लिए एक जैसा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर कोई सत्य बात हमें प्यार से, स्नेह से, सम्मान के साथ दिया जाए तो हमारे लिए उसको फॉलो करना इजी होता है, और यही भगवान कर रहे हैं। क्योंकि वो निराकार शक्ति है, आज अगर अपने निराकार स्वरूप में हम सबके सामने आ जाए, वो चमक भी जाए तो हमें पता ही नहीं लगे क्या होगा, क्या हो रहा है। क्योंकि हमें परिवर्तन होना है, हमारी आदतों को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है, हमारे संस्कारों को बदलना है। तो जब संस्कार, व्यवहार, विचार, मन, बुद्धि, आदतें, इन सब को अगर बदलना है, चरित्र को अगर परिवर्तन होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, ज्ञान चाहिए, और साथ साथ उस पढ़ाई को लागू करने की शक्ति चाहिए। तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर एक साधारण तन द्वारा, जिसको परमात्मा ने नाम आकर के दिया, कहा बच्चे, दादा लेखराज की आत्मा को भी कहा, बच्चे आज से आप ब्रह्मा कहलाओगे। ब्रह्मा अर्थात स्थापना का माध्यम। ब्रह्मा ही क्यों नाम रखा? इसके लिए बहुत डिटेल्स है। आपने, आप सोच रहे होंगे आज दिन तक हमने ब्रह्मा जी को तो किसी और रूप में देखा है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ब्रह्मा जी को श्वेत वस्त्र में क्यों दिखाते? सारे देवी देवताओं को रंगीन पोशाकें दिखाते हैं, सुंदर सुंदर पोशाकें दिखाते, केवल एक ब्रह्मा और दूसरी माता सरस्वती को श्वेत वस्त्र में दिखाते, कभी सोचा ऐसा क्यों? और क्या कारण है किसी भी देवताओं को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं? कभी दिखाया? राम जी को, कृष्ण जी को, नारायण जी को कभी दाढ़ी मूछ दिखाया? नहीं। ब्रह्मा जी को सफेद दाढ़ी, सफेद बाल के साथ दिखाते हैं, एक बुजुर्ग होने की निशानी। दाढ़ी मूछ वास्तव में मानव होने का प्रतीक है इसे। और बहुत सारे ब्रह्मा जी नहीं होते, एक ही ब्रह्मा जी होते हैं। खैर, इसकी और डिटेल्स आप जब 7 डेज का कोर्स करेंगे सेंटर्स पर जाकर, आपको स्पष्टता और मिलेगी। तो दादा लेखराज, जिनको परमात्मा ने नाम दिया, कहा ब्रह्मा, तो हम सभी इस संस्था के जो बच्चे हैं, इस यज्ञ, क्योंकि इस संस्था को शिव बाबा ने कहा, बच्चे मैं ये संस्था नहीं बना रहा हूं, मैंने ये यज्ञ रचा है। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ रचा है। अभी भाई सब भी कुछ देर पहले बता रहे थे इस यज्ञ की हिस्ट्री। आप में से कईयों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा या समझा नहीं होगा कि यज्ञ क्यों बोला। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ कब किया जाता है? यज्ञ तब किया जाता है जब कोई लक्ष्य सामने हो और उस लक्ष्य की पूर्ति करनी हो तो लोग यज्ञ रचते हैं, ऐसा ही है ना। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा परमात्मा ने सृष्टि पर आकर सत्य ज्ञान देना शुरू किया और कहा बच्चे, उसी सत्य ज्ञान को कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य को कहते हैं ज्ञान मुरली। आप में से कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये शब्द सुना होगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में मुरली बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी मुरली? ये काट की बजाने वाली मुरली नहीं, मुरली माना ईश्वरीय ज्ञान, जो डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं। अभी जो 3-4 दिन से आप जितने भी सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आपने अभी तक भगवान के डायरेक्ट महावाक्य नहीं सुने, लेकिन आपने क्या सुने? उस ज्ञान को जिन लोगों ने सुना और जो उन्होंने समझा, और जो हमारे अनुभव हैं उस मुरली से, हमारा जीवन जो उस मुरली से परिवर्तन हुआ वो अपने अनुभवों को हमने आपके सामने रखा, लेकिन आपका भी तो अधिकार है उस परमात्मा महावाक्य को, ज्ञान मुरली को आप भी तो डायरेक्ट सुने, आप भी तो डायरेक्ट खुराक, डायरेक्ट ज्ञान सागर के ज्ञान को आप भी उस सागर से ही प्राप्ति करें, ये आपका भी तो अधिकार है ना। तो इसलिए परमात्मा महावाक्य वास्तव में देखा जाए हम सबकी, अच्छा आप में से कौन कौन है जो ये सोचते हैं ये परिवर्तन बहुत अच्छा है, एक महीना भी ये परिवर्तन हमारे जीवन में बना रहे तो ठीक है, हफ्ते भर भी बना रहे तो ठीक है, आपको एक हफ्ते एक महीने का पॉजिटिविटी चाहिए या लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए, सदा काल का चाहिए या एक डेढ़ महीने तक चलेगा काफी है, क्या लगता है? सदा काल, सदा काल का परिवर्तन आध्यात्मिक ज्ञान से आता है और आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर द्वारा मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान का जो सोर्स है कभी भी वो किसी मनुष्य का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता है, वो धार्मिक ज्ञान हो सकता है, भक्ति का ज्ञान हो सकता है, आसनों का ज्ञान हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान पारलौकिक ज्ञान वो परलोक में रहने वाला परमात्मा ही दे सकते हैं। तो वास्तव में ज्ञान मुरली ज्ञान के महावाक्य ही परमात्मा शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य वो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको हम लोग रोज सुबह सुन करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और वही हमारी समझ का भी आधार है। आप में से कौन कौन सिस्टर शिवानी को जानते, देखा हुआ है, जानते मतलब देखा हुआ है सुना हुआ है, कैसा लगता है उनका ज्ञान? अच्छा लगता है ना। अच्छा जी बुलाना था, मिस कर रहे हैं ना उनको। हाँ देखो सारी दुनिया उनके उनको सुनती है टीवी पर पता है शिवानी दीदी रोज सुबह क्या करते हैं? सबसे पहले मुरली सुनते हैं। इतने समय जो ज्ञान मुरली सुनी वो उनकी अंडरस्टैंडिंग का उनकी क्लैरिटी का बेस है। आपको सिर्फ सिस्टर शिवानी को सुनना अच्छा लगता है या सिस्टर शिवानी जैसा बनने का भी कोई मूड है? क्या लगता है उन जैसा हम बन जाए लगता है? वो तो आप टीवी पे एक फेस देख रहे हैं लेकिन हमारी दादियां जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, कभी आपका अगर सामना होता, दादियां ऐसी महान विभूतियां हैं जो ब्रह्मा बाबा के सामने छोटे छोटे बच्चे थे। 80 साल पहले 85 साल पहले जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो यंग बहनें थी, माताएं थी, उन्होंने जब ज्ञान मुरली को सुना परमात्मा महावाक्य, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे सभी को, बच्चे ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये शिव बाबा का ज्ञान है, आपको मुझे नहीं शिव बाबा को याद करना है। हर एक आत्मा को खुद भी ब्रह्मा बाबा खुद भी शिव बाबा को याद करते थे और हर एक आत्मा को कहते थे परमात्मा से जुड़ो। ज्ञान सागर के हम सभी बच्चे हैं तो ज्ञान मुरली सुनना ये आप भी इतने ही सुख शांति से भरपूर हो सकते हैं, आप भी इतने ही ज्ञान खजाने से भरपूर हो सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी नेचुरल गुण शक्तियां काम करने लग जाएंगी, आपका जीवन सफल होगा। यहां स्वर्ग है ना, आपके घर का वातावरण ऐसा बनना चाहिए और वो आप बना सकते हैं और ये संभव है। लाखों परिवार ऐसे हैं जो रोज मुरली सुनते हैं, जो रोज योग लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो 4 बजे आप आकर योग करते हैं ना इधर, और लाखों लोगों ने तो वो अपनी लाइफस्टाइल बना ली है। कईयों को शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठ जाएंगे ना, सारा दिन रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता, थकावट होगी, नींद पूरी नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो सुबह अमृत वेले उठकर मेडिटेशन करते हैं वो सारा दिन ज्यादा एक्टिव रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो सुबह अमृत वेले को योग करना, रोज मुरली सुनना हमारे सेंटर्स पर, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, हमारे सेंटर्स पर, किसी भी सेंटर पर आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाएंगे तो जब 7 डेज का कोर्स पूरा करेंगे ना, उसके बाद वो आपको मुरली क्लास के लिए इनवाइट करेंगे। मुरली क्लासेस की टाइमिंग्स बताएंगे, क्योंकि मुरली से ही सदा काल का परिवर्तन आना है। कोर्स जो आप कर रहे हैं इससे आपको प्रेरणा जरूर मिली है, पर प्रेरणा अगर जीवन में कायम ना रहे फिर तो थोड़े समय के बाद जैसे उतरता है ना नशा, उतर जाएगा सब कुछ, फिर वही के वही हो जाएंगे। नहीं, इस प्राप्ति को यूं ही जाने नहीं देना। आप में से कौन कौन है जो समझते हैं हम कायम रखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू कंटिन्यू एंड कीप दिस एक्सपीरियंस टिल द लास्ट, तो आप जरूर सेंटर पर जाना। और मुरली कहां सुनाई जाती है, वो जो परमात्मा के महावाक्य है ना, जो अनेक वर्ष तक चले, क्योंकि दो प्रकार की मुरली होती है। दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन से जो शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारे उसको कहते हैं साकार मुरली। साकार माना साकार में ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते हुए जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे उसको कहते हैं साकार मुरली। 18 जनवरी 1969, क्योंकि 47 जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान विभाजित हो गया, तो परमात्मा के आदेश अनुसार, क्योंकि कहते हैं भारत वो भूमि है जो भगवान की जन्म और कर्म भूमि है, भारत कहलाना, भारत कहलाने वाली भूमि ही भगवान की जन्म और कर्म भूमि है, तो परमात्मा ने कहा बच्चे भारत में जाकर सेवा करनी है। तो शिव बाबा के कहे अनुसार, आज्ञा अनुसार ब्रह्मा बाबा और आज हमारी मातेश्वरी जगदम्बा का भी स्मृति दिवस है 24 जून, तो वो आपको दीदी, हमारे सीनियर दीदी आने वाले हैं इस क्लास के बाद, नाश्ते के बाद आपका जो क्लास है, दीदी आपको मम्मा के बारे में, मातेश्वरी के बारे में बताएंगे। तो और सारा का सारा संगठन उस समय समर्पित हुआ, बहुत सारे लोग आकर उस समय समर्पित हुए, मुरली सुनते थे, परिवर्तन होता था, उनका बहुत दिल करता था हम भी अपनी जीवन को सेवा में लगाएं। उसमें बच्चे भी आते थे, बुजुर्ग भी आते थे, मुरली तो आज भी सभी सुनते हैं, हमारे सेंटर्स पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, गोद का बच्चा भी आता है, माता पिता आते हैं तो उसको ले आते हैं। लेकिन हमने देखा जो छोटे छोटे बच्चे कई समय से सेंटर्स पर आते, क्योंकि उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, मुरली क्लास में भी वो लोग आ जाते हैं, आपको पता है छोटे बच्चे सेवा में मदद करते हैं। हमने देखा ऐसे बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, ऐसे बच्चे जब इस संगठन में आते हैं, इस वातावरण में बार बार आते हैं, हंसते खेलते पता ही नहीं लगता कब उनका भगवान से इतना अच्छा नाता जुड़ जाता है, और वो सारे टॉपर्स हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे हैं अलग अलग फील्ड में टॉप किए कर रहे हैं, लेकिन टॉप करने के साथ साथ अच्छे सदाचारी गुणी संस्कार भी उनके अंदर विकसित हो रहे हैं और हर प्रकार से उनका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। हमने देखा जो बच्चे सेंटर्स पर आते हैं माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, परिवार के साथ, उन बच्चों की एडिक्शंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, होती भी है तो उनकी मानसिक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको ओवरकम कर जाते हैं बड़े होने के बाद, तो और उनके अंदर आदर सत्कार, एक सद्भावना, पॉजिटिविटी, भाषा की सभ्यता, व्यवहार की सम्मानजनक व्यवहार, ये नेचुरली उनके अंदर अच्छी मात्रा में विकसित होता रहता है। और साथ ही साथ हम लोग बहुत मेडिटेशन तो कराते ही हैं, परिवार का परिवार उनको मदद करता है। हमारे यहाँ एक बच्चा आता था, अभी तो वो यूएस में रहता है, उसका नाम है ध्रुवांक। वो जब बहुत छोटा था ना तब आता था, माना 3-3.5 साल का था तब से आता था, तब उनके माता पिता और उनकी दादी को ज्ञान मिला, वो मेडिटेशन सीखा, 7 डेज कोर्स किया, उसके बाद रोज उनकी दादी की एक आदत थी, आज भी है, मुरली तो रोज सुनते थे, मेडिटेशन घर पे भी रोज करते थे, जैसे सुबह शाम दिया जलाते हैं ना, ऐसे सुबह शाम हमारे यहाँ मेडिटेशन जरूर करते हैं, तो वो भी करते थे, भाई बहने भी अपने घरों में करते हैं। तो दादी रोज रात को सोने से पहले शिव बाबा को पत्र लिख करके सारे दिन का समाचार देख करके सोती थी। अब वो जो पोता है ना, वो रोज दादी के साथ बैठता था रात को, वो सारा दिन जैसे बच्चे घूमते रहते हैं ना दादा दादी के साथ, ऐसे ही रहता था। वो भी रोज पेपर पेन लेके बैठता था तब जब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अभी तो वो 9th या 10th में है शायद। उस समय पर जब उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था ज्यादा, पर बच्चों को शौक होता ना, जो दादी कर रही है मैं भी करूंगा, तो क्या करता था, रोज एक गाड़ी बनाता था, कार ड्राइंग करता था, और पूछते थे ये, और कार ड्राइंग करके उसको फोल्ड करके अगले दिन हमें सेंटर पर लाकर दिखाता था, ये मेरी लेटर है बाबा की। तो हम पूछते थे, बच्चे ये क्या है, ये क्या बनाया आपने, गाड़ी बनाई है, ये किसके लिए है, ध्रुवांग की गाड़ी है? तो कहता था नहीं, ये गाड़ी बना के मैं बाबा के लिए भेजता हूं रोज। उस बच्चे की बात में लॉजिक हो या ना हो, पर उस बच्चे का कनेक्शन जो परमात्मा से रोज जुड़ रहा है ना, ईश्वर पर जो विश्वास है ना उसका, ईश्वर के अस्तित्व पर जो उसको भरोसा है, आज वो बच्चा पढ़ाई में नंबर 1 है, खेलकूद में भी अच्छा ही कर लेता है। आप कभी उस बच्चे से मिलेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए आज उनके पूरे परिवार में मुरली रोज सुनी जाती, ऐसे कईयों के परिवार में। तो कहने का भाव क्या है, ईश्वरीय महावाक्य जो परमात्मा महावाक्य है, उससे हम सभी के जीवन में, चाहे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, युवा है, या कोई भी है, प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, सबके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। अभी पीछे हमारे सेंटर पर एक भाई आते हैं, उन्होंने पिछले 8 मास से ये मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया था। 7 डेज का कोर्स पूरा करने के बाद रेगुलर एक भी दिन उन्होंने मुरली मिस नहीं करी आज दिन तक, और सुबह सुबह सबसे पहले पहुंचने वाले वही भाई हैं, और वो रोज पहुंचते हैं और मेडिटेशन करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर उसके बाद मुरली के बाद वो चले जाते हैं, फिर उनको ऑफिस जाना होता है, घर जाके नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं, ऐसा उनका रूटीन रहता है। तो एक दिन मुरली में आया, बाबा ने कहा बच्चे भोजन भी हमारा बहुत शुद्ध होना चाहिए, ये मुरली में आ रहा था, हम भगवान के बच्चों का भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जो चीज देवताओं को अर्पित नहीं करते हैं, जो मंदिरों में भोग नहीं लगाया जाता है, ऐसी अशुद्ध चीजों का प्रयोग बच्चों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मुरली सुनकर के वो ऑफिस चले गए, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद मेरे को आकर के बताया, दीदी मैं आपको एक बात बोलूं, आपको पता है मुरली में आज 1 हफ्ते पहले ये बात आई थी, भोजन कैसा होना चाहिए, अपने शरीर के अंदर ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए जो अशुद्ध है। और 10 दिन के बाद वो भाई आकर के कहते हैं, दीदी 10 दिन तक मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, पर मेरे को शराब पीने की बहुत आदत थी, पर मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने बताया नहीं किसी को, पर 6 मास हो गया ये आदत मेरी छूट गई है। उस आत्मा के लिए ताली बजाइए। तो मुरली क्या करती है, कईयों को डर लगता है, पता क्या डर लगता है, दूर बैठे डरते रहते हैं, परिवर्तन अच्छा जरूर लगता है पर होने लग जाए तो डर लगता है, कहीं हम सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे, कहीं हम इन जैसे तो नहीं बन जाएंगे, कहीं सब कुछ छूट तो नहीं जाएगा, उनको लगता है सन्यासी योगी माना, योगी लाइफस्टाइल तो हम सबका होना चाहिए, योगी माना उनको लगता है सब कुछ त्याग देना, छोड़ देना, हम कहते हैं योगी माना सदा संतुष्ट, योगी माना सदा भरपूर आत्मा, योगी मना सदा स्थिर, सत्य, सशक्त आत्मा और सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा, खुश रहने वाली आत्मा, सुखी रहने वाली आत्मा। तो ये तो हम सबको चाहिए, तो योगी बनना चाहिए ना। हाँ, योग योगी आत्मा को त्यागना तो पड़ेगा, पर क्या त्यागना पड़ेगा पता है? परिवार और नौकरी नहीं त्यागना है, उससे कुछ नहीं होगा। आज अगर कोई परिवार को त्याग कर इधर भी आ जाए ना, तब भी अगर मन ठीक नहीं है तो वहां यहां भी यही हाल है, वहां भी वही हाल होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन त्यागना क्या है? विकारों को त्यागना है। ये हमें शिव बाबा मुरली में सिखाते हैं बच्चे, क्योंकि हम सबने शायद गाया था मंदिरों में। क्या गाया था? आज भी कई लोग गाते हैं, विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा, गाते गाते। अब वो भगवान आकर कहते हैं बच्चे, शिव बाबा कहते हैं बच्चे, आपने तो पुकारा था विष हरना है, आपके अंदर से क्रोध, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार हरना है, वो विष है आपके लिए। अब मैं आ गया हूं, मेरी विधि सुनो, हर लूंगा। विधि है मुरली, विधि है राजयोग का अभ्यास, विषय विकार मिट जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अपने संपूर्णता को प्राप्त करके अव्यक्त हुए। और उसके बाद से दादी गुलजार जी, जिनको दादी हृदय मोहिनी जी भी कहते हैं, तो उन दादी के तन में शिव बाबा की प्रवेशता शुरू हुई और वो मुरली आगे भी कंटिन्यू हुई। ऐसा नहीं कि माध्यम बदला, तो मुरली तब भी शिव बाबा की थी, मुरली अब भी शिव बाबा की है, सिर्फ माध्यम बदला है। लेकिन ऐसा नहीं कि दादी के जाने के बाद अभी तीसरा कोई आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी डिटेल्स आपको बाद में कभी मिलेगी, लेकिन ये दो ही माध्यम है जो परमात्मा ने अपने लिए निर्धारित किए। और दादी जी के तन के द्वारा जो शिव बाबा ने मुरली सुनाई, उसको कहते हैं अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली माना ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी के तन द्वारा जो परमात्मा शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारे, उसको कहते हैं अव्यक्त मुरली। और जो साकार ब्रह्मा बाबा के रहते हुए जो महावाक्य उच्चारे, उसको कहते हैं साकार मुरली। तो दो प्रकार की मुरली पूरे विश्व के अंदर सुनाई जाती है। वो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रिंटेड वर्जन्स अवेलेबल होता है, जो यहां मधुबन से ही सारे सेंटर्स पर पहुंचती है। और वंडरफुल बात पता क्या है, जो मुरली मधुबन में चलती है ना, इस समय 7-8 बज रहा है, 7 से 8 का टाइम मधुबन की मुरली का टाइम होता है, जहां पर हमारे सीनियर दीदियां जो तपस्वी, जो 60-70 वर्ष से मुरली का अध्ययन कर रहे हैं और योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जीवन को आध्यात्मिक बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसी आत्माएं भगवान के महावाक्य पढ़कर सुनाते हैं, समझाते हैं हमको। तो 7 से 8 अगर यहां मुरली हो रही है ना, वही सेम मुरली लंदन, अमेरिका, भारत, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, कहीं पर भी आप चले जाओ, किसी भी सेंटर पर आप जाएंगे, आपको वही मुरली वहां पर भी सुनाई जाएगी। डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज चलती है। और एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल का ये हिस्सा बन जाता है परमात्मा के महावाक्य रोज सुबह सुनने के बाद, एक टॉनिक जैसा। और परमात्मा शिव बाबा की मुरली में, ये मेरा अनुभव है, 40 बरस हो गए मुरली सुनते हुए, मुरली में आज भी ऐसा लगता है कितनी नई ताजा, कितनी अच्छी बात आज मिली, जो इतने साल से मुझे समझ नहीं आया, मैं सुन तो रही थी। जैसे बुद्धि के कपाट खुलते हैं, हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण, हमारे विचारों का शुद्धिकरण परमात्मा महावाक्य से होता है। मां जो होती है ना, माता पिता जो होते हैं, बच्चे को चॉकलेट चिप्स नहीं खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? रोटी खिलाते हैं। ताकत बच्चे को चिप्स से आनी है, चॉकलेट से आनी है, या रोटी से मिलनी है? बोलिए जी, रोटी से। और रोटी रोज खाई जाती है, ताकत वाली चीजें रोज खाई जाती हैं, और खुराक वाली चीजें, ताकत वाली चीजें खाली पेट में खाने के लिए कहते हैं, सही है ना? बादाम सुबह सुबह कहते हैं खाली पेट खा लो। ऐसे ही खाली पेट जब आत्मा सुबह सुबह, उसका मन शांत है, अभी नींद से जागे हैं, फ्रेश हैं, एक्टिव हैं, सारे दिन के कर्म और जिम्मेवारियों का बोझ का असर अभी उतना नहीं है, अभी पेट खाली है आत्मा का, तो जो पहला भोजन है वो क्या जाना चाहिए? पहला भोजन क्या जाना चाहिए? जो ताकत देता हो। तो हम लोग पहला भोजन पता है क्या करते हैं? मुरली। कहते हैं ना ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए। सुबह सुबह दुनिया में कोई अशुद्ध चीजें खाता है? सुबह सुबह तो नहीं खाएगा। सुबह ताकत खुराक वाली चीजें खाई जाती। जैसे हम शरीर को रोज भोजन कराते हैं, ऐसे आत्मा का भोजन परमात्मा महावाक्य है, वो हमारे सत्य मात पिता है, वो जो हमें देगा ना वो ताकत देगी। हाँ, कोई अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वो चॉकलेट चिप्स की जैसे हैं, हाँ वो भी अच्छी लगेंगी, कभी कभी वो भी अच्छा लगता है, परंतु ताकत आत्मा को जो आज डिप्रेशन से मुक्ति चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, आत्मिक बल चाहिए, मनोबल चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, वो खुराक कहां से मिलेगी? वो मां से ही मिलनी है, आत्मा के पिता से ही मिलनी है। ठीक है, तो ज्ञान मुरली। इस प्रकार से हम लोग सुबह भी जैसे अमृत वेले मेडिटेशन करते हैं, तो शाम को भी नुमा शाम का जो समय होता है, ये बाबा ने हमको सिखाया है। ब्रह्मा बाबा सुबह सुबह अमृत वेले आकर सामने बैठते थे बच्चों के। आपने पांडव भवन देखा ना, कल होके आए ना पांडव भवन, आपने बाबा का कमरा देखा होगा। ये तो अभी तो बहुत सुंदर बना दिया है, पहले इतना नहीं था, बहुत सिंपल हुआ करता था बाबा के समय में, क्योंकि बाबा अपने जीवन काल में बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे, साधारणता रखते थे, परंतु सोच बहुत ऊंची थी। तो पांडव भवन में बाबा, मम्मा और बहुत सारे लोग, समर्पित लोग जो होते थे, जैसे अभी हम लोग तन से समय से समर्पित हैं, ऐसे समर्पित लोग रहते थे। अभी तो वो सिस्टम खत्म हो गया समर्पणमयता का। पहले क्या होता था, परिवार का परिवार भी बाबा मामा के सामने तो आके कई लोग समर्पित हुए, उसमें बच्चे भी होते थे, बुजुर्ग भी होते थे, युवा भी होते थे, कुमार कुमारियां भी होते थे। अभी तो वो सिस्टम ही नहीं है, वो रूल ही चेंज हो गया। आज अगर कोई परिवार में है तो उनके परिवार की जिम्मेवारी उनके लिए नंबर वन होना चाहिए। और अगर कोई ये कहे नहीं हमें तो यहीं रख लो, कई बार लोग बहुत दुखी होते हैं ना, कहते हमें यहीं रख लो, हम कहते नहीं, वो होना संभव नहीं है। अभी अगर आपने अपने परिवार को रचा है तो आपकी रचना की जिम्मेवारी आपकी पहली है। आप वहीं रहो जहां रह रहे हो, लेकिन ज्ञान योग सुनते हुए अपनी रचना को भी सशक्त बनाते हुए, अपने घर को भी श्रेष्ठ वातावरण में लाते हुए आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो हम ये कहते हैं 24 घंटे में से 23 घंटे आपके, जो मर्जी करो, नौकरी करो, बाल बच्चे पालो, जो मर्जी करो, पर एक घंटा अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, मुरली के लिए, ईश्वरीय ज्ञान और योग लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जरूर निकालिए, और निकल सकता है, ताकि बाकी 23 घंटे ठीक चले। ठीक है, ओके। बाकी संस्था का परिचय आपको मिला, हमारी दादियां जो आज भी हम सबके बीच में ऐसी महान आत्माएं हैं जो ब्रह्मा बाबा के टाइम पर इस ज्ञान में चले थे, आज भी ऐसे, आज हम उनको देख करके चल रहे हैं। जब हम उनके व्यक्तित्व के अंदर देखते हैं, बाबा जैसे गुण थे, बाबा जैसे गुण दिखाई पड़ते हैं, जो हम लोगों को चला रहे हैं, हम जैसी अनेक भाई बहने जो समर्पित हैं, एक ईश्वरीय परिवार की पालना कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कैसे करते हैं, लव और लॉ के बैलेंस के साथ करते हैं, बहुत बिजी रहने के टाइम पर इजी होकर के करते हैं। जब हम उनको लव एंड लॉ का बैलेंस रखते हुए देखते हैं, जब हम उनको बिजी समय पर इजी रहते हुए देखते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें पता लगता है हमको भी ऐसा करना है। है ना। लेकिन हमारी दादियों का भी, वरिष्ठ भाई बहनों का भी आधार क्या है, आज भी चाहे हमारी दादी जी है या कोई भी छोटे से छोटा भी आएगा, बड़े से बड़ा भी होगा, रोज दिन की शुरुआत ईश्वरीय महावाक्य मुरली क्लास से ही होती है। तो सुबह और शाम सेंटर्स पर, सुबह शाम, बल्कि किसी किसी सेंटर पर दिन में चार बार मुरली सुनाई जाती है, ताकि जिसको जो टाइम सूट करे उस टाइम पर आकर के वो मुरली सुन करके जाए। और आप, मैं तो हैरान होती हूं देखकर, आपकी रोज की समस्या का हल उस मुरली में होगा। आपके मन में अभी कल एक बात आई होगी, मन प्रश्न कर रहा होगा ये मुझे कैसे करना है, आपको अगले दिन की मुरली में ये उत्तर मिल जाएगा, एक दो दिन के अंदर उत्तर मिल जाएगा, ये आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस सारे ज्ञान का सोर्स क्या है, परमात्मा का ज्ञान। और परमात्मा आज भी इस धरा पर सत्य ज्ञान डायरेक्ट दे रहे हैं, तो डायरेक्ट परमात्मा से आत्मा को जो खुराक मिलती है उससे ज्यादा बेनिफिशियल तो हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो हमारी ये शुभ भावना है कि आप भी जरूर मुरली को, बाबा हमेशा मुरली दो शब्दों से शुरू करते थे, पता है कौन से दो शब्द, हाँ, बाबा हमेशा बच्चों के सामने बैठकर जब मुरली शुरू करते थे, दृष्टि देते हुए कहते थे, मीठे बच्चे। और सारी मुरलियां इन्हीं दो शब्दों से शुरू होती है, कैसे बच्चे, मीठे बच्चे। हाँ, उसको पता है, वो जानी जाननहार है हम कितने मीठे हैं, उसको भी पता है, खट्टे कड़वे कितने हो जाते हैं वो भी पता है उसको, लेकिन फिर भी ज्ञाता होते हुए भी वो सामने अपने बच्चों को जब देखकर शिक्षा देता है, प्यार से कहता है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को प्यार से याद करो। फिर मुरली में एक प्रश्न आता है, फिर उसका उत्तर होता है, फिर रोज मुरली में एक जैसे वरदान मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है। अगर आप डाइनिंग हॉल की तरफ ऊपर में अगर कभी गए हो तो आपने देखा होगा, उसमें मुरली का एक बोर्ड लिखा हुआ रहता है, जिसमें रोज की मुरली लिखी हुई हैंड रिटन होती है। तो मुरली में एक ब्लेसिंग, वरदान मिलता है, वो वरदान इतना पावरफुल होता है, अरे वरदान ही लेकर के सारा दिन आप ऑफिस के लिए निकल जाएं, घर चले जाएं ना, उस वरदान को ही अगर हम सारे दिन लागू करें तो भी मन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और मुरली सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो कोई कथा नहीं है, कथा जैसे सुना और आ गए, नहीं, पढ़ाई है। जो मुरली सुनाने वाली दीदियां होते हैं, जो इस सेवा करते हैं मुरली सुनाने वाले, वो पूछते हैं, बाबा मुरली में पूछते हैं, बच्चे आज सारा दिन जांच रखना, क्रोध तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, बच्चे हमारा खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए, बच्चे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई, बच्चे सदा सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, सर्वोच्च सत्ता, जिससे ऊंची कोई हस्ती नहीं, जिसको सारा संसार पूजता है, मानता है, वो कहते हैं, बच्चे किसी को दुख नहीं देना। तो जब जब दुख देने वाले संस्कार उमड़ेंगे ना, तुरंत ब्रेक लग जाएगा, आज बाबा ने मुरली में मना किया है। और ऐसे ही ब्रेक्स लगते लगते संस्कारों में चेंज आता है, अपनी आत्मा की चेकिंग होती है। रोज बाबा कहते हैं, चेक करो बच्चे, चेक करो, हम किसी के अवगुण तो नहीं देखते हैं। तो सारा ध्यान क्या होता है, अपनी ओर मुड़ जाता है, हमें दूसरों पर काम, दूसरों पर काम करना चाहिए, सहयोग देना है, समझा सकते हो, काम किस पर करना है, अपने ऊपर, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उसको अपने ऊपर काम करना है। हम अपने ऊपर काम करेंगे, यही शिव बाबा का ज्ञान का सार है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ठीक है, तो हमारी तो ऐसी शुभ भावना है कि आप सभी बाबा के मुरली सुनने वाले बच्चे बन जाएं जल्दी जल्दी। जिसको ये ज्ञान इतना अच्छा लग रहा है, तो नेचुरली ज्ञान दाता भी तो अच्छा लगेगा, है ना। आपको लगता है ये दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया, ये फलाने भाई ने बहुत अच्छा सुनाया, आप बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, लेकिन हमें मन के अंदर पता होता है ये हमारा कुछ भी नहीं है, सप्लाई वहां से आ रही है। ओम शांति।
ओम शांति। जो आप लोगों की दीदी ने क्लास कराई है वो सिर्फ इस टॉपिक का 5% है, 95% जो है अभी भी बाकी है। आपको सिर्फ दीदी ने बताया कि किस तरह से ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा बीज ब्रह्मा तन में आए और इन्होंने हमें मुरली के रूप में बताया। लेकिन एक पूरे क्लास में आपने देखा होगा दीदी ने ये कहा था कि परिवर्तन, तो ये परिवर्तन दोनों रूप में आता है, सकारात्मक में भी आता है नकारात्मक भी आता है। नकारात्मक क्या होता है कि जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये नकारात्मक है, और जैसे हम फोर्सेस के लोग हैं, मैंने अपने अनुभव में बताया था कि मैं मेजर था जब मुझे ये ज्ञान मिला, उसके बाद में हम लोगों की जो फौजी लाइफस्टाइल होती है उसमें पार्टियां है, लिकर, जो भी भोजन हम नहीं डिस्कस करना चाहते वो सब होता है। तो एक चीज ये होता है नकारात्मक बोलो या सकारात्मक कि हम लोगों से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को अपने घर नहीं बुला सकते हैं क्योंकि वो भोजन नहीं करना चाहता जो आप उसको वो कहते हैं घास फूस खिलाएगा, ये इसके घर में आके कोई फायदा नहीं है। तो ये और ना ही कोई आपको अपने घर बुलाता है क्योंकि आप कहते हो कि नहीं मेरा तो भोजन ऐसा है, तो उस समय ये मुरली काम आती है। हमारे समय में भी हम भी जब ज्ञान में आए तो जब ये इस तरह की हमारे में भी फीलिंग आई तो हमने मुरली द्वारा इन सब प्रश्नों का उत्तर निकाला। तो एक चीज जो आता है स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन, जब आप अपने को स्व को परिवर्तन करोगे आज इसकी कोई फीलिंग ही नहीं आती हमारे को, चाहे हमें कोई घर में बुलाए चाहे हमें भोजन परोसे, हम खाए ना खाए कोई हमारे, हम किसी को घर में बुलाते हैं जो हम खिलाते हैं वो खाते हैं, और लोगों ने भी हमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये सब बातें जो है मुरली में बाहर आती है और आपको इसका हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो जैसे दीदी ने कहा कि ये सिर्फ 5% ऑफ आप लोगों को इनपुट मिला है, 95% आप लोगों को ये तब मिलेगा जब आप लोग अपने अपने सेंटर में जाओगे। एक चीज और दीदी ने बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी है। हम यहां पर हैं, मैं अभी भी सर्विंग कर्नल हूं, अभी मैं दीदी का एग्जाम्पल बताता हूं, ये चाहे समर्पित है अपना पूरा जीवन उन्होंने इस यज्ञ में दिया है, लेकिन इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनके पेरेंट्स ने इनको दी थी अपने छोटे भाई की आगे मदद करना, जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं होता है तब तक दीदी ने जो है वो कॉरपोरेट जगत में काम किया, और जब वो भाई सेटल हो गए तो अभी दीदी जो है अपना सेंटर संभालती है। वैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई यहां पर डिटेल होके नहीं आते हैं, जब भी कभी हमको सेवा करने का मौका मिलता है हमें एक फक्र महसूस होती है, हमें एक पॉजिटिविटी आती है, हमारे मुंह में स्माइल आता है, आह भगवान का काम करने का मौका मिला, हम छुट्टी लेके दौड़े दौड़े यहां पर आते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में दीदी का धन्यवाद करेंगे।
इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा ना कट ऑफ, एक्चुअली कट ऑफ नहीं होता, जैसे शब्द भले कट ऑफ बोला लेकिन इसका अर्थ कट ऑफ नहीं है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है ना, अगर उसको MBBS करना है, इंजीनियरिंग करनी है, IAS बनना है, तो थोड़े समय के लिए वो अपने पढ़ाई में फोकस हो जाता है, मिलना जुलना शादी ब्याह में जाना पार्टी में जाना कम कर देता है ना, लेकिन एक बार बन जाने के बाद वो अपनी पूरी लाइफ के हर अनुभवों को जीता है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, मुरली सुनना शुरू करते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा पार्टी करने का टाइम ना हो, क्योंकि आपको पता है आपको नौकरी भी करनी है, घर के काम भी निपटाने हैं, मुरली क्लास में भी जाना है, तो हो सकता है आप 10 बारी में से 4 बारी जाओ 6 बारी जाओ, पार्टी करने उतनी बारी ना जा सको। उसको कट ऑफ तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कहेंगे कि थोड़ा समय फोकस हो जाते हैं। लेकिन जब हम फोकस होते हैं हमारी वाइब्रेशंस अपलिफ्ट होती है, तो आपको पता है पूरी दुनिया आपकी तरफ आना पसंद करती है। आप कट ऑफ होना भी चाहोगे ना, दुनिया आपके संपर्क में आना चाहेगी, आपके पास बैठना चाहेगी, बोलना चाहेगी, ऐसा ही बनना चाहिए ना। क्या फायदा सारा जीवन पार्टी किया पर एक भी व्यक्ति मेरे साथ रह करके जीवन बिताना नहीं चाह रहा। इससे अच्छा ये है ऐसे करें। ओम शांति।
एक बार जोरदार तालियों के साथ में दीदी का स्वागत करेंगे। थैंक यू दीदी।